विषय पर लेकर के भगवान भरत जैन शासन के अंदर न चक्रवर्ती की पूजा है, न राज्य अवस्था की पूजा है और न व्यक्ति विशेष की पूजा है, यहाँ पर गुणों की पूजा है। जिसने भी गुणों को प्राप्त किया वह कोई भी रहा, जैन शासन ने उसे सिद्धालय तक पहुंचा दिया। अयोध्या का इतिहास तो इतना कुछ भरा पड़ा है कि अगर उन्हें उसे हम कल्पकाल तक भी कहते जाएं तो हम क्या सरस्वती माता भी उसका बखान नहीं कर सकती। अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जहां जन्म लिया, जहां अनंत बार सौधर्म इंद्र कुबेर आए, जहां अनंत माता पिताओं ने अनंत तीर्थंकरों को जन्म देकर अपने मातृत्व को, अपने कुल को, अपनी जाति को धन्य किया, ऐसी उस नगरी अयोध्या के अंदर बैठ करके वास्तव में हम भी अपने सौभाग्य को स्वर्णिम सौभाग्य कहते हैं। और ये सब उपकार ज्ञानमती माता जी का है। उन्होंने उम्र के इस पड़ाव के अंदर भी अयोध्या आने का जो अपना सपना संजोया वह वास्तव में समय की पुकार थी, और समय ने करवट ली और ज्ञानमती माता जी के भाव बने कि हमें अयोध्या जाना है, जहां से हमारी भारतीय संस्कृति का उद्गम हुआ है, जहां से विद्या और कलाओं का उद्गम हुआ है, जहां से प्रजा ने जीवन जीने की कला जानी है, जहां से राजाओं ने राजनीति जानी है, जहां से वैराग्य की शिक्षा मिलती है, जहां पैदा होने वाले भरत जैसे महानुभाव ने भेद विज्ञान का अमर संदेश दिया। हम तो खाली पढ़ लेते हैं, जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। ये पंक्तियां पढ़ी जाती हैं, और पंच कल्याणक में विशेष रूप से जब भगवान दीक्षा लेने की ओर अग्रसर होते हैं तब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, और क्षणिक वैराग्य तो हर व्यक्ति के मन में आ जाता है। लेकिन ये धरती ऐसी धरती है कि जहाँ वास्तव में संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, ये बताया सम्राट चक्रवर्ती भरत ने। बाहुबली के साथ युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, उन्होंने जाकर दीक्षा ले ली। क्षण भर के लिए वहां विषाद का वातावरण रहा, लेकिन उसके बाद सब कुछ भरत चक्रवर्ती के प्रभा चक्र के आगे सब समाप्त हो गया, और सब लोग केवल भरत की जय जयकार कर रहे थे। उनका चक्रवर्ती पद पर अभिषेक करने के लिए आतुर थे चक्ररथ ने तुरंत अयोध्या के अंदर प्रवेश किया, और भरत का सौधर्म इंद्र ने भी आकर के राज्याभिषेक किया, सारे राजाओं ने राज्याभिषेक किया। ये वो धरती है जिसे भरत ने छहों खंडों की राजधानी बनाई थी। आज अयोध्या इतनी छोटी सी दिखती है, यह अयोध्या बहुत बड़ी थी, और यहाँ जैन रामायण के अंदर तो वर्णन आया है, ज्ञानमती माता ही बताती हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय अयोध्या की आबादी 70 करोड़ थी। सुन लो सब लोग कान खोल कर की बात, एक अयोध्या की आबादी केवल 70 करोड़ थी। आज पूरे देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़ है ना, और हमारे दो की रट लगी रहती है। लोग सोचते हैं कि पॉपुलेशन भारत के अंदर ज्यादा है, लेकिन किसी जमाने में तो बहुत ज्यादा थी। पढ़ते भी हो 56 करोड़ ही चले, जदुवंशी नेमिनाथ की बारात में ही 56 करोड़ लोग चल दिए थे। 56,000 मुनियों का संघ एक बार लंका में पहुंच गया था, जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, वहां जाकर उद्यान में उनको केवल ज्ञान हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने जाकर वहां दीक्षा ले ली, तमाम रानियों ने दीक्षा ले ली। उस समय का वर्णन है कि अगर इन अनंत वीर केवली का संग थोड़ी सी देर पहले पहुंच जाता तो राम और रावण में संधि हो जाती। बोलो कितना बड़ा महत्व है, साधु संग का बहुत बड़ा महत्व है। जहां जहां वे चले जाते हैं वहां एकता, संगठन, मैत्री, सौहार्द हो जाती। तो आप भरत चक्रवर्ती के राज्य में खूब मैत्री का, खूब सौहार्द का वातावरण चल रहा है। वो घर में वैरागी थे और उनके जीवन पर ये पंक्तियां साकार होती हैं कि संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। रहे तो संसार में ही 96,000 रानियों के अलग अलग महल बने थे अयोध्या में, और 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, एक ऐरावत हाथी की तरह से उनके पास 84 लाख हाथी थे। ये सब चक्रवर्ती का कटक था। उनका राज्याभिषेक हुआ, चक्रवर्ती अभिषेक, तो अयोध्या की जनता, देवों ने तो आकर खूब क्षीरोदधी के जल से कर दिया, ऋषभ देव का भी किया था, भरत का भी किया, और अयोध्या की जनता ने क्या किया, उसके पास तो क्षीरोदधी का जल नहीं था, यहीं की सरयू नदी के जल दोने में पत्ते के दोने बना बना करके उसमें जल लाला करके अपने राजा का राज्याभिषेक किया। आज भी वो सरयू नदी कल कल बहती हुई आज भी इन राजाओं के संदेश को बताती है और कहती है कि जैसा मेरी नदी का जल है ऐसा ही उन सब महापुरुषों का मन था, निर्मल मन था। इसीलिए उन्होंने क्षण मात्र में जब राज्य छोड़ा तो उसकी ओर मुड़ करके देखा नहीं और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। तो आदि पुराण के अंदर वर्णन आया है कि चक्रवर्ती के राज्य में कोई कमी नहीं थी, खूब उनके साथ हर दम दिव्य रत्न और देवों का समूह लगा रहता था, क्योंकि उनके चक्र रत्न की सुरक्षा तमाम देव मिलकर के करते थे। तो चक्रवर्ती के पास 9 निधि और 14 रत्न थे। अब सुनो 9 निधि क्या होती हैं? कह तो देते हैं 9 निधियां, आपको किसी को मालूम है 9 निधियां क्या है? नहीं मालूम होता। काल, महाकाल, नैसर्प्य, पांडुक, पद्म, माणव, पिंगल, शंख और सर्व रत्न, ये 9 निधियां थी। और इन निधियों से चक्रवर्ती इतने विशाल परिवार की व्यवस्था में भी बिल्कुल निश्चिंत रहते थे। सोचो 10-5 लोगों का परिवार होता है तो व्यक्ति दिन भर उसमें व्यस्त रहता है, चक्रवर्ती का क्या होता, फिर तो वो तो बिल्कुल ही मरणासन्न हो जाते सबकी व्यवस्था करते करते। लेकिन ये 9 निधियां उनके परिवार की पूरी व्यवस्था करती थी। काल निधि करती थी कि प्रत्येक दिन लौकिक शब्द, व्याकरण आदि शास्त्रों को उत्पन्न करती थी, बीना, बांसुरी, नगाड़े और इंद्रियों के मनों के विषयों को भी समय समय पर वो निधि देती रहती थी। काल के अनुसार बीना बजाना है, रानियों का मनोरंजन करना है, बच्चों को खिलाना है, तो ये निधि अपना काम करती थी। महाकाल निधि ये करती थी 80-80 आदि 6 कर्मों के साधनभूत द्रव्य और संपदाओं को हर दम उत्पन्न करा करती थी। किसी को तलवार की जरूरत है, किसी को बंदूक की जरूरत है, किसी को खेती में हल की जरूरत है, तुरंत ये महाकाल नाम की निधि सब कुछ उपस्थित कर देती थी। नैसर्प ये निधि क्या करती थी, सैया, आसन, मकान उत्पन्न करती थी, क्योंकि चक्रवर्ती के तो बहुत सारे पुत्र पुत्रियां थे, जैसे ही कोई होते उनका स्टडी रूम अलग चाहिए, उनका शयन कक्ष अलग चाहिए, है ना, सबके लिए आज बनाते हैं, किसी का बेडरूम बनाते हैं, जैसे शादी होने को होती अच्छा अच्छा मकान बढ़िया बनाते हैं, ये सब नैसर्प निधि देती थी। पांडुक निधि देती थी, धान्यों को देती थी, 6 रसों को भी उत्पन्न करती थी, किसी को घी चाहिए कढ़ाई में तैयार है, कनस्त्रों में तैयार है बढ़िया, तो पद्म, फिर पद्म निधि क्या देती थी, ये निधि रेशमी सूती आदि सब तरह के वस्त्र देती थी। समझी आराध्या, इसके जब ये निधि आ जाएगी ना तो तुमको बाजार कपड़े नहीं खरीदने जाना पड़ेंगे, अच्छे अच्छे लेंगे चुन्नी सब आ जाएंगे। और मानव निधि करती थी, नीति शास्त्र और अनेक प्रकार के शब्दों को देती थी, कैसे शब्द आपको चयन करना है, क्या बोलना है, ये सब ये निधि बताती थी। पिंगल, ये निधि अनेक प्रकार के दिव्य आभरण देती थी, कैसे सजना, कैसे मुकुट लगाना, कैसे मांग बेदी, कैसे चूड़ी पहनना, ये सब चीजें उत्पन्न कर देती थी। क्योंकि आप समझो हम यहाँ अयोध्या से निकलते हैं तो राजभवन है, राजभवन जहाँ पहले राजा लोग रहते थे, अब भी राजभवन के अंदर उनके परिवारजन है। उसके पास से निकलते हैं तो वहां पर लिखा है श्रृंगार हाट, वहां लिखा है श्रृंगार हाट। हमने सोचा कि राजभवन के ठीक सामने यहाँ से रानियां अपना निकल निकल करके जो भी लेना होता होगा ले लेती होंगी, क्योंकि उनके श्रृंगार के लिए उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। ये आज भी राजाओं के महलों की व्यवस्थाएं होती थी, तो चक्रवर्ती के यहाँ कहना ही क्या, अनेक प्रकार के आभूषण, जैसे उनका मन हुआ उनके लिए हार आ गया, उनके कुंडल आ गए, उनके लिए कड़े आ गए, सारे उनके आभूषण आ गए। शंख नाम की निधि करती थी, अपने प्रदक्षिणार्थ नाम के शंख से सुवर्ण की सृष्टि उत्पन्न कर देती थी। सर्व रत्न, ये निधि महानील, नील, पद्मरागमणि आदि मणि रत्नों को देती थी, और ये रत्न अपनी कांति से इंद्रधनुष की शोभा को प्रकट करते रहते थे। किसी को भेंट में देना है तुरंत जैसे इस निधि को याद किया जाता, रत्नों का थाल उपस्थित हो जाता था, और आतिथ्य सत्कार में मेहमान को दे देते थे राजा लोग। तो ऐसे करके इन निधियों से चक्रवर्ती के राज्य की, परिवार की, चक्रवर्ती परिवार का संरक्षण, संवर्धन, व्यवस्था सब चलती थी। और देखो 14 रत्न थे उनके, तो 14 रत्नों में 700 सजीव रत्न थे, चेतन रत्न, और 7 अजीव अचेतन रत्न थे, जो पृथ्वी की रक्षा के लिए ऐश्वर्य के उपभोग के साधन थे। तो सजीव रत्न कौन थे, सेनापति, ग्रहपति, हाथी, घोड़ा, स्त्री, सिलावट और पुरोहित, ये सब चेतन रत्न थे। और अचेतन रत्न में क्या थे, छत्र, खंड, अशि, मणि, चर्म और कांकणी, ये रत्न अचेतन रत्न थे। और स्त्री रत्न में आया कि सुभद्रा, उनकी स्त्री रत्न थी जो पट्ट रानी, और 96,000 रानियां थी लेकिन पट्ट रानी को स्त्री रत्न कहा। अब उसको आदि में लेकर सारी 96,000 रानियों को स्त्री रत्न समझ लीजिए। तो चक्र रत्न, छत्र रत्न, दंड रत्न, दंड रत्न से उन्होंने विजयार्ध की गुफा को जाके खोला, जहाँ कहीं कोई समस्या आती दंड रत्न तैयार रहता था। बोले अब चक्रवर्ती विजयार्ध की गुफा के आगे जाना है 3 खंडों को विजय करने के लिए, तो सेनापति जय कुमार ने एकदम विजयार्ध की गुफा में दंड रत्न चलाया, उसके अंदर से खूब ज्वाला निकली, और विजयार्ध के ऊपर मागध देव रहता था, वहां पर उनका बाण जाता है, और उससे पहले वो दंड रत्न से गुफा को खोलते हैं, तो 6 महीने तक उस गुफा में ज्वाला जलती रही, समझे, 6 महीने तक सेना अंदर नहीं जा सकी, सेना बाहर ठहरी हुई है। और चक्रवर्ती ने तब तक कहा कि भाई 6 माह तक हम बाहर में छावनी बना करके रहेंगे, और सेनापति से कहा आसपास के जाकर के राज्यों को जीत करके आओ। तो ऐसे दंड रत्न से करते थे, जब 6 महीने में ज्वाला शांत हुई तो पूरी चक्रवर्ती की सेना उससे निकल करके गई। दंड रत्न, असि रत्न, मणि रत्न, चर्म रत्न, कांकड़ी रत्न, सेनापति रत्न, पुरोहित रत्न, गृहपति रत्न, स्थपति रत्न, हस्त रत्न, अश्व रत्न, हस्ति रत्न माने हाथी, 84,00,000 हाथी, और स्त्री रत्न। तो स्त्री रत्न में सुभद्रा नाम की रानी को विशेष रूप से लिया है, जो कि चक्रवर्ती के लिए पूर्ण समर्थ उनके उपभोग के लिए और सौंदर्य और गुणों की खान थी। और इसके साथ में चक्रवर्ती के 10 प्रकार के भोग साधन के, आप सुनते रहो, ये भी आज चक्रवर्ती नहीं है, लेकिन जो बलवान लोग होते हैं तो जैसे उनके खाने पीने की सामग्री अलग होती। कोई पहलवान है तो उसको सूखी रोटी नहीं खिला सकते, उसको तो बढ़िया बादाम चाहिए, दूध चाहिए और खूब पौष्टिक चीजें चाहिए। ऐसे ही चक्रवर्ती के लिए भी महाभोग के 10 प्रकार के भोग, दशांग भोग जिसे कहते हैं, 56 भोग नाम की कोई मिठाई चलती है ना, और किसी दुकान का भी नाम है दिल्ली के अंदर 56 भोग। तो ये सब भोजन के साधन हैं। और चक्रवर्ती के कटक में जो विशेष रसोई घर जो दिव्य सामग्री को देता था और जिसको केवल चक्रवर्ती ही पचा पाते थे, अगर उनके लड्डू का एक कण भी कोई दूसरा खाना चाहे तो नहीं पचा सकता था, इतना पौष्टिक होता था उनका भोजन। आने तो आपको असली में मैं सोचने लग गई इस पुस्तक को पढ़ करके कि चक्रवर्ती भरत का चरित्र तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि खाने पीने से लेकर के और मोक्ष जाने की स्थिति तक चक्रवर्ती भरत की जो विशेष विशेष बातें हैं वो आप सब सुनते रहिए। और चक्रवर्ती बनने के लिए भी महान पुण्य की आवश्यकता होती है, तो पुण्य को जीवन में हमेशा एकत्र करने की, संग्रह करने की कोशिश करते हुए आप सबके लिए प्रेरणा है कि चक्रवर्ती भरत के जीवन से भेद विज्ञान का परिचय पाना बहुत जरूरी है। आज जब अयोध्या में 17 जून से होने वाले पंच कल्याणक में आएंगे, चक्रवर्ती भरत की एक 31 फुट की प्रतिमा जिसका मंदिर बिल्कुल अलग है, और चक्रवर्ती भरत पद्मासन मुद्रा में 101 पुत्रों के मंदिर में जो विहंगम दृश्य को उपस्थित करता है, जिस मंदिर में जाकर के ऐसा लगता है हम कौन से लोक में आ गए, अच्छा लगा है कि नहीं? ऐसा मंदिर कहीं भी ना है और ना आपने देखा होगा। तो उन 101 पुत्रों के अंदर भी भरत और बाहुबली की भी प्रतिमाएं हैं। भरत की चक्रवर्ती की पद्मासन में प्रतिमा है, बाहुबली की भी बिना बेल की प्रतिमा है। बेल तो उनके तब लगी जब वो ध्यान में लीन थे, लेकिन जब केवल ज्ञान हो गया तो बेल वेल सब हट जाती हैं और उनका दिव्य शरीर केवल ज्ञान में चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में गंधकुटी के अंदर विराजमान हो जाता है। ऐसी सारी तमाम शास्त्र की बातों को जानना है तो आपको अयोध्या के एक एक मंदिर के दर्शन करके उनके इतिहास की ओर दृष्टिपात करना होगा। आप ऐसे पुण्य का हमेशा संचय करते रहें। जो लोग चक्रवर्ती भरत भगवान सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय।